Tegyis. Daityanam natrina verta. Kamsavritya pranodita. Chakravata haruvena. Harasi namarvakam. Daityaha. Dusra asur. Namna. Namvala. Pranavartaha. प्रणावर्त कंस भृत्य कंस का दास प्रणोदित उसके द्वारा प्रेरित चक्रवात स्वरूपेण बवंडर के रूप में जहार उड़ा ले गया आसीनम बैठे हुए अर्भकम बालक को अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। जब बालक जमीन पर बैठा हुआ था तो तृणावर्त नामक असुर जो कंस का दास था वहां पर कंस के बहकाने पर बवंडर के रूप में आया और बड़ी आसानी से बालक को अपने साथ उड़ाकर आकाश में ले गया। तात्पर्य कृष्ण का भारीपन माता के लिए असह्य था, किंतु जब तृणावर्तासुर आया तो वह उन्हें तुरंत उड़ा ले गया। यह कृष्ण की अचिंत्य शक्ति का दूसरा प्रदर्शन है। जब तृणावर्त आया तो कृष्ण तिनके से भी अधिक हल्के हो गए, जिससे वह उन्हें उड़ा ले जा सका। यह उनका आनंद चिन्मय रस था। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रियै वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वर्ल्ड होली नेम वीक फेस्टिवल की मैं सर्वप्रथम परम पूज्य भक्ति अनंत कृष्णदास गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कृपा का कि ये जो आज का सेवा है ये मेरा तो कोई योग्यता नहीं है, महाराज का सानिध्य है, महाराज का आशीर्वाद है, चक्रवर्ती गुरु जी का आज्ञा है। और अगर मेरी कोई योग्यता है सेवा करने की आज, तो इतना ही है कि अधिकारी और महाराज जी का आशीर्वाद है और उनका आज्ञा है और मैंने मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा कर पाया हूँ 4:30 से, कोई मिस नहीं किया। मंगल आरती, गुरु पूजा, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, श्रृंगार आरती, जप, 16 मल्ला भी पूरा कर लिया है तो ऐसे एक बार एक बहुत सीनियर भक्त सिखा रहे थे कि भागवतम क्लास देना है, मतलब आपने ऐसे प्रयास करना चाहिए, तो इतनी योग्यता है। सब भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम ये सेवा ठीक से कर पाएं अपने शुद्धिकरण के लिए और श्रील प्रभुपाद हमारे संस्थापक आचार्य उनके चरण कमलों की धूलि की प्रसन्नता के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो बड़ा अद्भुत प्रसंग चल रहा है, तृणावर्त उद्धार का ये जो प्रसंग चल रहा है बड़ा अद्भुत। जो भी प्रमुख असुर की लिस्ट है उसमें से एक ये है तृणावर्त प्रभु तो इनका उद्धार, तो हम तीन भाग में चर्चा करेंगे आज। पहले भाग में हम देखेंगे कि ये स्थिति क्या है, तृणावर्त ले गया है और कैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में, जो एक मुख्य छोटा ही तात्पर्य है पर प्रभुपाद जी जो मुख्य भाग भाव पकड़ रहे हैं कि भगवान कृष्ण की अचिंत्य शक्ति का प्रदर्शन है ये, तो उस अचिंत्य शक्ति के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और कैसे भक्त लोग इस भगवान की अचिंत्य शक्ति के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं उसका चर्चा करेंगे पहले भाग में। दूसरे भाग में चर्चा करेंगे कि हमारे वैष्णवाचार्य लोग तृणावर्त से इस लीला से क्या शिक्षा देते हैं, दूसरे भाग में चर्चा करेंगे। और तीसरे भाग में चर्चा करेंगे कि उस शिक्षा को हमारे जीवन में हम कैसे उसको लेना चाहिए, समझना चाहिए। तो तीन भाग में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं अचिंत्य शक्ति, सबसे पहले देखते तृणावर्त। तो तृणावर्त के बारे में दो बात हम देख सकते हैं। नंबर एक, कंस भृत्य, कंस का नौकर था, तो नौकर है किसी को बनना है। प्रभुपाद जी एक बार सुबह की सैर कर रहे थे तो एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी को कि बाहर के लोग कहते हैं अरे आप तुम्हारा दिमाग फेर दिया है, तुम्हारा जो भेजा बदल दिया है और तुम्हें ये हरे कृष्ण में लगा रहे हैं, है ना, कंडीशनिंग, आपका कंडीशनिंग कर दिया है बुद्धि को। तो प्रभुपाद जी समझा रहे थे कंडीशनिंग तो आपको होनी ही है, या तो भगवान कृष्ण और आचार्यों की शिक्षाओं के द्वारा या बाहर के लोगों के द्वारा, भेजा तो बदला जाना ही है आपका। अभी आप निर्णय कीजिए कि बाहर के बेवकूफों में भेजा बदलवाना है अपना, या आचार्य और गौर निताई के चरण कमलों से अपना भेजा बदलवा करके बढ़िया आनंद में कृष्ण भावना मृत होकर नृत्य करना है ना, ये सुबह शाम हमारे भक्त यहां करते हैं, आपके ऊपर है। तो नौकर तो बनना ही है सबको, सबको, हर कोई नौकर है, अब किसका बनना है वो निर्णय करना है। तो ये कंस का नौकर बन गया, दुख की बात है। दूसरी बात है कि तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में उद्धव जी जब विदुर जी से मिलते हैं, या विदुर जी उद्धव जी से मिलते हैं, संस्कृति है वैसी बोलने की, तो विदुर जी से जब बात कर रहे हैं उद्धव जी, तो बताते हैं कि ये तृणावर्त उस कैटेगरी का असुर था जो एक स्पेशल कैटेगरी, प्रभुपाद जी इस्तेमाल करते हैं शब्द विजार्ड, विजार्ड मतलब एक ऐसी जादू शक्तियां रखने वाला व्यक्ति जो अपना रूप बदल लेता है, है ना। तो हम देख सकते हैं कि कई असुर थे इस कैटेगरी के, कंस में ने भेजा, उस कैटेगरी का असुर था ये तृणावर्त। तो पूतना ने कितना सुंदर रूप बना लिया था, है ना, अघासुर ने, बकासुर ने, शकटासुर ने, ये सब उस कैटेगरी के लोग थे जो अपना रूप बदल सकते हैं, विजार्ड कैटेगरी, तृणावर्त भी उसी कैटेगरी का था। तो इस रूप में आया वो, बवंडर के रूप में आया तृणावर्त। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि अचिंत्य शक्ति भगवान की आप जो है, आप इसका दूसरा प्रदर्शन देख लीजिए। अभी पहला प्रदर्शन था कि जब माता यशोदा के गोद में, कल चक्रवर्ती समझा रहे थे कि भारी है ना पर्वतास्त्र, कि कैसे भारी हो गए भगवान, इतने वजन हो गए, इतने पूरे ब्रह्मांड का वजन हो गया भगवान का। हमारे एक भक्त हैं वो नासिक में एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, बता रहे थे प्रभु जी जो आम का जो जूस होता है, आम का गूदा निकाल के उसका रस बनाते हैं और उसको फिर 100-100 लीटर के कंटेनर में पैक करके हमारी कंपनी है जो नेस्ले और बाकी जो जूस बनाती है, आम, ये मैंगो, क्या कहते हैं, माजा माजा, ये सब बनाती है, उनको बेचते हैं। तो मैंने कहा कैसे बनाते हैं, तो बोले प्रभु जी वो 3 सेकंड में जो आम का जूस है उसको पहले ठंडा होता है, गर्म करते हैं उसको, पूरा उबाल देते हैं 100 डिग्री से ऊपर, 120 डिग्री आसपास उसको उबाल देते हैं, अब इसमें क्या पोषण रह जाएगा, उसको पूरा उबाल देते हैं और उसके बाद 3 सेकंड में उसको 0 डिग्री पे ले आते हैं, शून्य तापमान पे ले आते हैं 3 सेकंड में 120 डिग्री के आम जूस को, और उसको फिर जैसे हो गया इमीडिएटली उसको पैक करते हैं और सील कर देते हैं, और 100 लीटर का एक डब्बा होता है 100 लीटर का, और उसको फिर रखते हैं, 1 साल तक भी कुछ नहीं होता, बस खोला उसको तो इमीडिएटली उसको इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि सड़ जाएगा वो, खोलते ही सड़ेगा, वो सड़ा हुआ है ऑलरेडी, जल गया है पूरा, तो ठंडा करके उसमें पोषण भी नष्ट हो गया सब कुछ, है ना, तो बस खोलते ही सड़ जाएगा वो, बास मारेगा थोड़ी देर में ही, तो इसलिए उसको यूज करना है इमीडिएटली, सील पैक कर देते हैं, तो इतनी जल्दी प्रोसेसिंग कर देते हैं। उससे भी जल्दी भगवान ने अपना वजन बढ़ा लिया और पल भर में कम भी कर लिया, कितना, 120 डिग्री नहीं, ब्रह्मांड के जितना वजन कर लिया भगवान ने। ये भगवान की चिंता शक्ति है जो हमारी समझ से परे है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसका दूसरा प्रदर्शन है कि अपना वजन पल भर में कम भी कर लिया भगवान ने, इतना कम कर लिया, इतना कम कर लिया कि तिनके के समान, फूंक भी मारेंगे तिनका उड़ जाता है, हवा में भी कई बार ऐसे झूलता रहता है, गिरता नहीं है, इतना हल्का तिनके हो गए भगवान। और तृणावर्त सट से उड़ा के ले गया, उड़ा के ले गया। और तृणावर्त की शक्ति बहुत थी, हम सोचेंगे कि नहीं नहीं तिनके के समान भगवान हो गए, उड़ा के ले गया तो क्या बड़ी बात है। प्रभुपाद जी की जगह वर्णन करते हैं कि बड़े बड़े वृक्षों को भी उखाड़ लिया था उसने, ले गया था ऊपर, इतना भवंडर में शक्ति थी। पूरे गोकुलवासी की आंखों में धूल डाल दिया, ऐसे नहीं, पावरफुल था तृणावर्त असुर। तो भगवान की चिंता शक्ति हम देख सकते हैं। माता यशोदा को भी भगवान ने दशम स्कंद में ही दो बार वर्णन आता है, कि जब पूरा इस अध्याय के अंत में भी वर्णन आएगा कि भगवान ने अपने मुख में, छोटे से मुख, बच्चे का मुख कितना होता है, ये गुलाब जामुन ही पूरा जाएगा नहीं अगर डालोगे तो, 3-4-6 महीने का बच्चा, छोटे से मुख में भगवान ने पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया माता को। तो इस अध्याय में तो संक्षिप्त वर्णन है, माता कहती ठीक है। लेकिन जो दूसरा अध्याय, जो बलराम जी और बाकी गोप सखागण कंप्लेन करते हैं माता यशोदा को कि ये मिट्टी खाया है, उस अध्याय में आप देखेंगे माता क्या क्या देखती है मुख में भगवान कृष्ण के, भगवान के चिंता शक्ति का वर्णन देख सकते हैं। ओ समय लग जाएगा। तो 14वें अध्याय में कृष्ण पुस्तक में भी जो है ब्रह्मा जी भी वर्णन करते हैं इसी अचिंत्य शक्ति के बारे में, जो उन्होंने भी देखा कि हे भगवान, आपकी अचिंत्य शक्ति ही नहीं तो है, नहीं है तो कैसे समझें इसको हम। अभी आप एक छोटे बच्चे के रूप में कलरव कर रहे थे, दोस्तों के साथ में खाना खा रहे थे, और वो भी असभ्य रूप से बाएं हाथ में खाना लेकर के खा रहे थे और जूठा भी खा रहे थे। पल भर में आपके इतने विस्तार हो गए कि पूरा ब्रज भर गया गऊ बछड़े और ग्वाल बालों के रूप में, और पल भर में आप सब विष्णु रूप भी हो गए और सब लोग आपकी आरती पूजा कर रहे हैं। मैं खुद भी आरती पूजा कर रहा था उस दृश्य में, मैंने देखा मैंने आपको, और पल भर में सब गायब भी हो गए, वापस आप बच्चे के समान हो गए। पल भर में इतना सब कुछ हो जा रहा है, ये अचिंत्य शक्ति के अलावा और कुछ इसका समझा नहीं जा सकता। तो कुछ दिन पहले पवन मित्र समझा रहे थे बड़े अच्छे से कि भगवान की लीलाओं को, भगवान के कृत्यों को लॉजिक और साइंस, तर्क और विज्ञान से समझना ये बेवकूफी है, ये बहुत ना समझी है, बचकानी बात है ये। अगर तर्क समझा सकता भगवान को तो तर्क भगवान से ऊपर हो जाता। अगर आधुनिक विज्ञान, जिसमें लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं बेचारे, वो समझा सकता भगवान को कभी, तो फिर लोग बाहर के सुखी नहीं हो जाते क्या? नहीं। तो तर्क और विज्ञान पर निर्भर नहीं रहना चाहिए भक्तों ने। अगर तर्क और विज्ञान कभी कभी कुछ चीजों को भगवान की समझने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए तो ठीक है, उसका उद्धार हो गया है ना। नीति शास्त्र, न्याय शास्त्र, तर्क वितर्क देने वाले लोगों का भी उद्धार हो गया, उनकी सेवा ले ली आचार्यों ने तर्क वितर्क के माध्यम से या विज्ञान के माध्यम से। प्रभुपाद जी ने इस्तेमाल किया स्पुटनिक का एग्जाम्पल। अगर स्पुटनिक 1 घंटा 25 मिनट में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा सकता है तो फिर अलग लोगों पर समय का अंतराल होने में क्या समझने मुश्किल है आप लोगों को। तो ऐसे आचार्य लोग ऐसे विज्ञानियों और तर्कवादियों को भी शुद्ध कर देते हैं उनका कुछ कुछ इस्तेमाल करके अपनी शिक्षाओं में है ना। तो हमें उन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। परम पूज्य श्री राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज के शिष्य आए थे 5-6 साल पहले, भारतीय ओरिजिन के ही पर अमेरिका से आए थे, वहां पर कोई प्रोफेसर थे, इसी गद्दी पे बैठ करके वो बोल रहे थे कि मैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा विज्ञान का प्रोफेसर हूं, लेकिन मूर्खों का राजा कह रहे थे अपने आप को। और फिर वो बड़े अच्छे समझा रहे थे, किसी को याद होगा अगर उस सभा में कोई था, बहुत अच्छे समझा रहे थे कि विज्ञान को हमें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है भगवान को समझने के लिए, कोई विज्ञान पे हमें निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, विज्ञान अगर भगवान को स्थापित करेगा, साबित करेगा, तब हम स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं नहीं नहीं। बड़े अच्छे समझा रहे थे वो। तो अचिंत्य शक्ति भगवान की हमारे आचार्य लोग श्री प्रभुपाद जी कई तात्पर्यों में, गीता, भागवत, चैतन्य चरितमृत, अपनी सुबह की सैरों में और अन्य ग्रंथों में सब जगह प्रभुपाद जी ने भर रखा है कि जब तक आप भगवान की अचिंत्य शक्ति को, जो समझी नहीं जा सकती, तब जब तक उसको स्वीकार नहीं करोगे अपने जीवन में, उस अचिंत्य शक्ति को, भगवान है ये, और श्रद्धा नहीं रखोगे, तब तक भक्ति के जीवन में आगे बढ़ना असंभव है। तब तक भक्ति के जीवन में आगे बढ़ना असंभव है। कुछ दिन पहले सुंदर रूप प्रभु भी क्लास दे रहे थे, तो बड़े अच्छे समझा रहे थे कि भगवान की चिंता शक्ति को देख सकते हैं, उनके होठों की शक्ति को देखना है तो पूतना वध का उद्धार लीला देखिए, उनके पैरों की शक्ति को देखना है तो चट्टासुर का उद्धार देखिए, उनके दो हाथों की शक्ति को देखना है तो तृणाव्रत का उद्धार देखिए, उनके एक हाथ की शक्ति को देखना है तो गोवर्धन धारण देखिए, और उनकी एक अगर एक हाथ का शक्ति देखना है तो मथुरा के उस धोबी का भगवान ने पूरा हाथ भी नहीं, हाथ का ऊपरी हिस्सा बस इस्तेमाल करके वध कर दिया उस धोबी का। और भगवान की एक उंगली, बाएं हाथ की छोटी उंगली की शक्ति देखनी है अचिंत्य शक्ति, तो गिरिराज धरण की लीला देख लीजिए। तो भगवान की अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। भगवान अचिंत शक्तियों के सागर हैं, अचिंत शक्ति खलु ये भावा न ताम तर्केण योजयेत। तर्क से नहीं समझ सकते हैं भगवान की चिंत शक्ति को, श्रद्धा से ही समझ सकते हैं, और नहीं करेंगे छड़ते रहिए संसार में। आचार्य लोग ये कहते हैं मेरे को बार बार, भगवान की चिंत शक्ति को आप तर्क वितर्क या विज्ञान से नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते, श्रद्धा से ही आप स्वीकार करना होगा इसको। और समझकर करेंगे भी क्या, करना भी क्या है, हमने लेना भी क्या है हमने समझ करके। हमको तो जो आचार्यों ने थोड़ा जूठन दिया है अपना, उसका रसा स्वाद लेना है बस। माता यशोदा ने कैसे, प्रभुपाद जी दसवें स्कंद के नौवें अध्याय के पहले तात्पर्य में बोलते हैं बात, कि कैसे माता यशोदा ने एकदा गृहदासीशु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी दधी निर्मंथने काले तानी अगायत दधी निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। कैसे दधी मंथन करते करते, दही मंथन करते करते यशोदा मैया क्या करती थी, वो कविताएं बना ली तृणाव्रत उद्धार की। तृणाव्रत का ऐसे इस्तेमाल किया माता यशोदा ने कैसे, उसकी कविता बना करके मक्खन मस्ते मस्ते तृणाव्रत का उद्धार कर रही है माता, लीला स्मरण चिंतन कर रही है। तो भक्त तो रस लेते हैं भगवान लीलाओं का, भगवान को पूरा समझने के प्रयास करने की जरूरत नहीं है, जितना आचार्यों की कृपा से जूठन मिल रहा है उसका रसा स्वाद करना है बस। ब्रजभाषा का तो गाना गाने का अधिकार हमें नहीं दिया है आचार्यों ने, लेकिन भक्तिनो ठाकुर का आचार्यों का एक गीत हमको जरूर दिया है, इसको हम गाएंगे। वो है क्या भजन बुक, यशोमति नंदन व्रजवर नागर, यशोमति नंदन, जोर से यशोमति नंदन व्रजवर नागर, यशोमति नंद गोधन रखवाला, यशोमति नंदन व्रजवर नागर, नंद गोकुल रंजन काना, गोपी परण धन मदन मनोहर, गोपी काली अदमन विधान, यशोमति नंदन गोपी परण धन भगवान कृष्ण की, अमल हरि नाम मिया विलासा, अमल हरि नाम विपिन पुरंदर नवीन नगर वरा, विपिन वंशी बदन सुवासा, वंशी बदन भगवान श्री कृष्ण की, ब्रजन पालन सुर कुल नाशन, ब्रजन पालन ब्रज जन पालन सुरकुल नाशन, नंद गोधन रखवाला,
गोविंद माधव नवनी दत्तकर सुंदर नंद गोपाल
नंद गोदन रखवाला भगवान श्री कृष्ण की, सुंदर नंद गोपाला भगवान श्री कृष्ण की।
यमुना तट चर गोपी वसनारा रास रसिक कृपमाया
लाउडली लाउडली
श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भगति विजोराश्रय भगति विनोदाश्रय जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा
यमुना तट चर भगवान श्री कृष्ण की, श्री राधा वल्लभ भगवान श्री कृष्ण की, यशोमती नंदन की। सो इजी। सो हमने तो ऐसे रस लेना है कृष्ण का, है ना। हमने समझने के प्रयास क्यों करने की जरूरत करनी है। इतना आचरण समझाए उतना समझ करके आनंद लेना है भक्तों के संग में, भक्तों के समाज में। नहीं, छोटे मंदिरों में दर्जन भक्त नहीं होते, यहाँ दर्जनों भक्त हैं। हमको कितना बड़ा है ना आनंद है इस मंदिर में प्रभुपाद जी की कृपा से। नहीं तो, जैसे साथ साथ में हमने रस लेना है भगवान कृष्ण का इन लीलाओं से और कथा से और उपदेश से, भजनों से, साथ ही साथ हमारे आचार्यों ने श्री प्रभुपाद ने कुछ शिक्षाएं भी दी हैं, क्योंकि अभी हम साधक स्तर पे हैं, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि से अभी हम छूटे नहीं हैं। तो जब ये रस लें साथ साथ में, कुछ ध्यान देने की बातें भी आचार्यों ने हमें सिखाई हैं इन सब लीलाओं से, मुख्य रूप से भक्ति विनोद ठाकुर ने, है ना। हर एक असुर के पीछे एक साधक के जीवन में एक दृष्टांत दिया है कि इस अनर्थ से हमको बचना है, है ना। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का मैं एक प्रवचन सुन रहा था जिसमें महाराज कई असुरों के बारे में वर्णन करते हैं और आचार्य लोग क्या समझाते हैं। तो महाराज समझा रहे तृणाव्रत के बारे में, महाराज समझा रहे थे कुछ कि ये तृणाव्रत है, ये प्रतिनिधित्व करता है, या इससे हमारा कौन सा अनर्थ, इस लीला को सुनने से कौन सा अनर्थ शुद्ध होगा। तो महाराज बता रहे थे कि मिथ्या पांडित्य का अहंकार, पांडित्य का मिथ्या अहंकार होना और उसकी वजह से वाद विवाद उठाना, अपनी छोटी सी मति से शास्त्रों को समझने का प्रयास करने के कारण कुछ भी वाद विवाद उठाना भक्तों के समाज में, कंट्रोवर्सी करना और फैलाना, भक्तों का दोष देखना और आर्ग्यूमेंट या कंट्रोवर्सी करते रहना, वाद विवाद करते रहना, तो ये जो हमारा अनर्थ है ये शुद्ध हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 18वें तात्पर्य में लिखते हैं इस बात को कि ह्यूमन रीजन फेल्स टू अंडरस्टैंड हाउ बाय सर्विंग द डिवोटी भागवत और बुक भागवत वन गेट्स ग्रेजुअल प्रमोशन ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन। प्रभुपाद जी समझाते हैं इस तात्पर्य में कि मानवीय बुद्धि से आप समझ नहीं सकते हो कैसे भागवत की चर्चा, स्मरण, चिंतन और प्रचार करने से कैसे हमारे अनर्थ भक्ति के पथ पर शुद्ध होते चले जाएंगे। ये मानवीय बुद्धि समझने से परे है, ये मानवीय तर्क वितर्क से समझने से परे है, इसको बस स्वीकार कीजिए। भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की शक्ति को, भगवान की लीलाओं की अचिंत्य शक्ति को। तो जैसे महाराज समझा रहे थे कि ये जो असुर है ये प्रतिनिधित्व करता है या क्या दर्शाता है वैष्णव समाज में, भक्तों के समाज में, कि वाद विवाद फैलाने की ये जो वृत्ति है, ये जो वाद विवाद फैलाने का बवंडर, इधर उधर की बातें फैलाने का, इधर उधर की बातें करने का, या अपने कुछ तर्क वितर्क निकालना शास्त्रों पे, आचार्यों के चरणों को छोड़ करके, और उस पर फिर कॉन्ट्रोवर्सी फैलाना या कुछ भी, तो उसको प्रतिनिधित्व करता है ये। तो संशय फैलाना, वाद विवाद फैलाना, ये सब जो भक्तों के समाज में बिल्कुल गलत है। जैसे गोकुल में इस तृणाव्रत ने क्या किया, सारे भक्तों की आंखों में धूल डाल दी, है ना। उसी प्रकार से भक्तों के समाज में अगर हम ये कॉन्ट्रोवर्सी या वाद विवाद, इधर उधर की बात, उसकी निंदा ये सब फैला रहे हैं, तो ये तृणाव्रत असुर के समान ही है। तो इससे होता क्या है, इससे कृष्ण ढक जाते हैं और हमारी चेतना धूल से भर जाती है और भक्तों के बीच में प्रीति लक्षण भी बाधित हो जाते हैं इसकी वजह से। तो हम देख सकते हैं इस श्लोक के अनुवाद में, अनुवाद दिखाइए, तृणाव्रत को अगर अपने जीवन में हम आने देंगे तो क्या होगा। अनुवाद, जब बालक जमीन पर बैठा हुआ था तो तृणाव्रत नामक असुर जो कंस का दास था वहां पर कंस के बहकाने पर बवंडर के रूप में आ गया और बड़ी आसानी से बालक को अपने साथ उड़ा करके आकाश में ले गया। तो कृष्ण खो गए, ब्रजवासियों से कृष्ण खो गए। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी अगर हम आने देंगे तृणाव्रत नामक इस असुर को तो कृष्ण खो जाएंगे हमारे जीवन से, और नाना प्रकार का वाद विवाद करते हुए, नाना प्रकार का निंदा आदि करते हुए बहुत चेतना हमारी आच्छादित हो जाएगी भौतिक विचारों से। तो अभी प्रश्न उठता है कि प्रभु जी कृष्ण भक्ति में इतना रस है, लीलाओं में इतना रस है, अभी हमने भक्ति ठाकुर का कृपा गाया यशोमती नंदन, कितना आनंद है भक्तों के समाज में, कुछ किया नहीं, सब बैठे ही है, मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठे, पर आनंद इतना है। तो फिर ये हम इस वाद विवाद, इधर की बात उधर, इधर की बातें, उसने क्या किया, उसको क्या, ये सब में हम जाते क्यों हैं फिर, ये प्रश्न है ना मन में आ ही रहा होगा कि ये सब तो कचरे में हम जाते क्यों हैं फिर। क्योंकि आत्मा का एक वृत्ति है, आत्मा को एक्साइटमेंट चाहिए। एक्साइटमेंट क्या कहते हैं हिंदी में, पता नहीं है ना, कुछ रोमांच, कुछ वो चाहिए। इसी के लिए वैदिक समय से आप देखोगे भगवान राम की लीलाओं की चर्चा वगैरह होता था और हर रोज शाम को गांव गांव में ड्रामा होते थे जिसमें नाना प्रकार का हमारे जो इमोशंस हैं, भाव हैं, वो रोमांचित होते हैं, है ना। कालांतर में वो फिल्मों ने उसका रूप ले लिया क्योंकि लोग व्यस्त हो गए, अभक्त हो गए, अभक्त, तो फिर भगवान लीलाओं में रस नहीं ले पा रहे ने, फिर फिल्में बनने लग गई। तो अभी भी आप देखिए जो लोग फिल्म में जाते हैं तो एक तथाकथित मसालेदार हिंदी फिल्म में जो सुपरहिट हो जाती है उसमें अगर आप देखेंगे तो क्या है, अलग अलग इमोशंस को उठाता है वो फिल्म, कभी प्रेम, कभी क्रोध, कभी है ना, कभी रोना, कभी हंसना, अलग अलग इमोशंस को उठाता है। तो अंत में सारे इमोशंस उठ गए, अच्छे से एक्सरसाइज हो गए सारे इमोशंस के, तो कहते बढ़िया फिल्म थी। तो ये आत्मा की एक जो जरूरत है एक्साइटमेंट की, इसको वैदिक समाज में और भगवान ने विधि बनाई है कि भगवान की लीलाओं के माध्यम से इसको पूरा करने की विधि थी, जो दुर्भाग्य से गड़बड़ होकर के फिल्मों में बदल गई। तो इसका रसा स्वाद अगर हम भगवान की लीलाओं से कर लेंगे इस अलग अलग भावों का, फिर फिल्मों में आकर्षण चला जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं इतने सारे युवा भक्त हैं आज हजारों की संख्या में पूरे इस्कॉन दुनिया में, जो फिल्मों को बड़ी आसानी से छोड़ पा रहे हैं, एक दो चार महीने में भक्त बनकर के छोड़ देते हैं फिल्मों को, जो बचपन से देखी हैं फिल्में, गाने छोड़ देते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि भवन लीलाओं में इतना रसा स्वाद है। परीक्षित महाराज मरण शैया पे बैठे हैं और कह रहे हैं ये न बता रहे ना, भगवान हरि ईश्वर करोति कर्ण रम्यानि मनः ज्ञानी च प्रवाह। कान को भी बढ़िया लग रहा है सुनने में, मन को भी मजा आ रहा है एकदम। परीक्षित महाराज कह रहे मरने के दो दिन रह गए, अभी दसवां स्कंद आ गया, इतना मजा आ रहा है उनको। और फिर श्रोतागण को वरदान दे रहे हैं पांच प्रकार का अगले श्लोक में। यद अपैति अरतिर यद यद श्रृणवतो अपैति अरतिर वितृष्णा शुद्धि शुद्ध्यंती तस्मै, नहीं शुद्ध्यंती मैं भूल गया शब्द, नहीं नहीं महाराज, हाँ जी महाराज, दस सात दो में वो बता रहे हैं पांच प्रकार का लाभ है ना इसमें होगा। दस सात दो ये रहा। सत्वम च शुद्ध्यत्य चिरेण पुंसः भक्तिर हरौ तत्पुरुषे च सख्यम तदेव हारम मन वदमन्य से चेत। क्या कह रहे हैं, पांच प्रकार के लाभ होंगे अगर कृष्ण कथा को आप आसाधन करोगे। सबसे पहला अपैति माने नाश हो जाएगा, किसका, अरति, कृष्ण कथा में जो रति नहीं है ना उसका नाश हो जाएगा। वित्रृष्णा, जो कृष्ण कथा में रुचि नहीं है, तृष्णा संसार में है, कथा में वित्रृष्णा है, ये भी नष्ट हो जाएगी। और सत्वम च शुद्धति, आपका व्यक्तित्व आपका सत्व शुद्ध हो जाएगा। तीसरा, चौथा, भक्तिर हरौ, भगवान राधा रास बिहारी नित्यानंद प्रभु के चरणों में भक्ति उपजेगी। और तत्पुरुषे पुरुषे च सख्यम, और भक्तों के साथ में सखा भाव मित्रता बढ़ जाएगी। और किस और क्या चाहिए ये पांच चीजें अगर मिल गई तो और क्या चाहिए बताओ। तो परीक्षित महाराज स्टैंप लगा के दे रहे हैं कि मैं कह रहा हूं ये पांच चीजें प्राप्त हो जाएगी भगवान कृष्ण की कथा श्रवण करने से, है ना। और हमने क्या लेना देना बताओ इस संसार में, नहीं। तो फिर हम प्रश्न उठता है कि एक्साइटमेंट भगवान की लीलाओं में पूरी होते होते भी हम देखते हैं प्रभु जी हमारा मन इस्कॉन समाज के या वैष्णव समाज के या मंदिर के इधर उधर की बातों में कंट्रोवर्सी वाद विवाद में चला जाता है ना। और कई बार तो इस हद तक चले जाते हैं कि भक्त लोग हम ऐसे भी बोल देते हैं, अरे इस्कॉन में तो ऐसा ही होता है, इस्कॉन की तो ऐसी हालत ही, इस्कॉन ऐसा ही है। तो ये डायरेक्टली हम प्रभुपाद जी और राधा रास बिहारी की डायरेक्ट निंदा कर देते हैं इस प्रकार से, जाने अनजाने बात बात में, इस्कॉन में ऐसा ही होता है ना। कई बार ऐसे हो सकता है हमारे साथ में, तो बड़ा सावधान रहना है हमने। तो श्रीमान रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी बता रहे थे एक बार कि ये कैजुअल टॉक जो हम करते हैं तो ये कैजुअल टॉक जो हम करते हैं तो कहते हैं इस कैजुअल है ना ऐसी इधर उधर की बात, दो मिनट गप्पा, इसमें बड़े अपराध कर बैठते हैं कई बार। तो रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी बार बार सावधान करते हैं भक्तों समाज में कि कभी भी गप्पा वाला जो इसमें नहीं होना चाहिए, बहुत अपराध हो जाते हैं इसमें। और कभी हमको लगता है कि उसने ऐसा कर दिया, उधर वाद विवाद उधर का बात हम लेकर के इंटरनेट से लेकर के हम निंदा करते हैं भक्तों की, इस्कॉन की, प्रभुपाद जी की, इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी की भी हो जाती है वो। तो बड़ा ध्यान रखना है हमने कि हमने सरल भाव रखना है, और साथ साथ में समझ भी होनी चाहिए कि ये इस्कॉन की बात नहीं है। इस संसार में कोई भी संस्था होगी उसका व्यवस्थापन करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ धन, कुछ ना कुछ जन और कुछ ना कुछ सुविधाएं, मनी मेन रिसोर्सेस, ये तीन चीजें किसी भी संगठन में संस्था में ये होएंगी ही, तभी संस्था आगे बढ़ेगी। और जहां पर भी ये तीन चीजें इन्वॉल्वड हैं, इन्वॉल्व मतलब है ना, समझते हैं ना, इन्वॉल्वड हैं, जहां पर भी ये संलग्न है ये तीन चीजें, वहां कुछ ना कुछ व्यवस्थापन लगेगा ही, क्योंकि संसार में सभी लोग बद्ध जीव हैं, सभी लोग काम क्रोध लोभ मोह मत्सर से प्रभावित हैं। जैसे कि अगर खिचड़ी प्रसाद बना हो, बिल्कुल सरल खिचड़ी प्रसाद, ठीक है, आश्रम में रखा हो शाम को 7 बजे कि खा लीजिए, तो उसके लिए कोई पुलिस वाला खड़ा करना पड़ेगा, कभी खड़ा होता है नहीं, क्योंकि सबको मालूम सबने आना एक चम्मच लेके खा के जाना है, करेक्ट ना। लेकिन जैसे ही फीस्ट, केक महाप्रसाद पनीर सब्जी इत्यादि है ना, जैसे फीस्ट की बात आती है दो पुलिस वाले खड़े करने पड़ते हैं वहां पे कम से कम, जोड़े मैं मजबूत हो, मेरे जैसे नहीं है ना, जोड़े मजबूत हो करने पड़ते कि नहीं। तो उसी प्रकार से संस्था जैसी हो गई उसमें धन जन और सुविधाएं होनी ही पड़ेंगी, तभी संस्था आगे बढ़ेगी। है ना, तो उसको फिर व्यवस्थापन करने के लिए कुछ भक्तों की भी जरूरत पड़ेगी, और जो उसमें वो सेवा ले व्यवस्थापन करने की वो सब चीजों को, उसको ध्यान भी रखना पड़ेगा कोई इसका गलत इस्तेमाल ना करे। अगर कोई जान अनजाने में गलत इस्तेमाल कर रहा है उसको समझाना भी पड़ेगा। तो तथा कथित छोटा मोटा इधर उधर का कुछ बात हो जाएगा तो मुझे उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरी सेवा थोड़ी ही ना है। हमको अपने हृदय की सरलता को बनाए रखना है और भगवान कृष्ण की लीलाओं का आनंद रसा स्वाद करते रहना है। हमको जरूरत नहीं है हर वाद विवाद में घुसने की, इधर उधर की बात करने की, निंदा करने की, उसने उसको ऐसे कर दिया, उसने उसको बोल दिया, उसका ऐसा हो गया, उसका वो गड़बड़ कर दिया, उसने उसका वो, ये हमको जरूरत है कुछ? अरे जो व्यवस्थापन का भक्त है, जिसने ये मनी धन जन और सुविधाओं को संभालने की जिम्मेदारी ली है, वो देखेगा। और अगर वो खुद कुछ गड़बड़ कर रहा है तो भगवान देखेंगे, श्री प्रभुपाद देखेंगे, अन्य अधिकारीगण देखेंगे। आपको बैठ करके आम के पेड़ के नीचे, जैसे गांवों में होता था पहले, आम के पेड़ के नीचे बैठ करके आपको अपना विचारधारा या समाचार देने की जरूरत नहीं है, उससे कुछ होने वाला नहीं। हमारा जो संस्था है वो प्रजातंत्र से नहीं चलता है, भारत के जैसे कि बहुत सारे लोग जुहू मंदिर में अगर मिलकर के चुनाव देंगे इस मत के ऊपर ये मत देंगे, तो ये मत फिर धीरे 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 जीबीसी तक पहुंचेगा और जीबीसी को मजबूरन बदलना पड़ेगा। ऐसा प्रजातंत्र है क्या हमारी संस्था में? नहीं, प्रभुपाद जी ने जीबीसी को नियुक्त किया है, वो जैसे ठीक समझेंगे श्रेष्ठतम भक्त जो है उस हिसाब से करेंगे, और हमको उसको पालन करना, अपने जो बोला गया उसको पालन करके आनंद में रहना है, यशोमती नंदन गाना है, हरे कृष्ण मंत्र करना है, प्रसाद पाना है, दो टाइम सुबह शाम गरम गरम प्लेट में आ रहा है ना, और नाचना भगवान के सामने। और प्रभुपाद जी ने इतने सारे शास्त्र दिए हैं, 150 पुस्तकों में परिणत हो जाएगा प्रभुपाद जी की शिक्षाएं, 150 पुस्तकें, 150 पुस्तकें, हम एक बार पढ़ लें पूरे जीवन में तो भी नहीं समय मिल पाएगा। इस वाद विवाद में कितना, इसकी निंदा करो, उसको अपराध करो, उसमें कितना समय व्यर्थ हो गया। भागवत में कितने लोग सिखा रहे हैं, दक्ष महाराज सिखा रहे हैं, रघुगण महाराज सिखा रहे हैं, और है ना, कितने सारे लोग देखो आप, उनके कितने, उनके कितना समय खराब हो गया, कितनी चेतना खराब हो गई, कितना समय खराब हो गया, जो समय अच्छे काम के लिए था, भजन करके अपने हृदय को शुद्ध करना, प्रचार की तैयारी करना, बाहर कितने सारे लोग अंधकार में इतने दुखी जीवन में है कि आप पूछ नहीं सकते, सोच नहीं सकते आप। अब थोड़ा प्रचार करने चलिए, बाहर लोगों को मिली पुस्तक वितरण करने चलिए, आपको पता लगेगा। उनको हम सेवा प्रचार छोड़ करके इधर छोटी मोटी जहां जरूरत भी नहीं है वहां ना घुसाते तो हमारी जो सेवा है उसमें हमने आनंद लेना चाहिए। और अगर हम भगवान कृष्ण की लीलाओं में ये रोमांच को रसा स्वाद नहीं कर लेते हैं तो फिर ये वाद विवाद में घुसेगा ही मन, और ऐसी असभ्य सभा में जाकर के हम बैठेंगे ही। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो एक बार ऐसा दुर्भाग्य से हुआ कि कुछ साथियों के साथ में एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए चले गए, तो पता लगा जो एक साथी है वो मांसाहार करने वाला है। अभी पहली बार जीवन में कभी, हम दूसरी बार या शायद गए थे वो रेस्टोरेंट में, कभी तो गए भी नहीं तब तक, और उसमें भी मांसाहार खाने वाला है ये। उसमें भी वो व्यक्ति बीच में टंग टंग आवाज आने लगी, तो मैंने बोला ये क्या है, तो दूसरा साथी मेरा थोड़ा मजाक करने के लिए बता रहे लगा कि वो हड्डी के अंदर का जो जूस होता है उसको चूस रहा है और हड्डी को फिर फेंक रहा है। उसी प्रकार से ये गंदी बात है, ये ओछी बात है, ये नीच बात है, वाद विवाद करना, दूसरों की निंदा करना, उस गंदे रस को चूसने के समान। परम पूज्य श्री राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज बताते हैं, गौरकृष्ण महाराज बताया करते थे कि महाराज कहते हैं कि ये मल को लेकर के सबको, सबके ऊपर फेंकने के समान है। आप सड़क से मल उठा के ले आए, पहली बात तो कचरा सुनकर के ले आए किसी से, अब लेकर के सबको बांट रहे हैं, इसके समान है ये, तो हमको नहीं करना है ये। इसके लिए हम नहीं आए हैं प्रभुपाद जी की सेवा में, राधा राजबिहारी की सेवा में। अपना जीवन का गौरव इस गंदगी में नहीं है, इस गटर में नहीं है, हमारा जीवन का बहुत ऊंचा गौरव है, और भगवान जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। मैं तैयारी कर रहा था, रेवती रमन रोजी का भी क्लास सुन रहा था जो तिरुपति के अध्यक्ष हैं, तो बता रहे थे भगवान का एक नाम है विश्ववित्त, तो भगवान जानते थे तृणव्रत आने वाला है इसलिए इतने भारी हो गए, माता यशोदा ने नीचे रख दिया पालने में, शकटासुर के नीचे एक पालने में रख दिया, भगवान सब जानते हैं कौन किस भाव से मेरे को अप्रोच कर रहा है, मेरे पास आ रहा है, किस भाव से, सब जानते हैं भगवान। तो किस भाव से हम भगवान को अप्रोच, माने क्या कहते हैं हिंदी में, समझे ना, किस भाव से भगवान के पास में जा रहे, भगवान सब जानते हैं। तो ये गंदगी लेकर के हमने नहीं वैष्णव समाज में चलना है। मेरे जीवन का गौरव इस कचरे को चूसने में नहीं है। मैं अपना जीवन यहां देने के लिए आया ब्रह्मचारी गृहस्थ होकर के, प्रभुपाद जी और राधा राजबिहारी भागवतम शास्त्रों को आनंद लेने के लिए, उसमें मेरे जीवन का गौरव है, इस गंदगी में नहीं है, इस टट्टी में नहीं है। अगर आप किसी बड़े करोड़पति के पास में जाकर के बोले, अरब खरबपति के पास जाकर बोले, अरे भाई साहब हिंदुजा जी आपको मालूम है क्या, वो जुहू सर्कल पे एक गन्ने का जूस बेचता है, वो अभी बोला, अनाउंस किया है आज 15 रुपए में नहीं 10 रुपए में देगा आज गिलास सबको, तो कोई आपको साइड में बुलाएगा, दे रहा तुम साइड पे, तू थोड़े तो तुम्हें कुछ अक्ल है क्या बात करने चाहिए किसके सामने, वो 5 रुपए कुछ भी बकवास करते हो, चलो यहां से, थोड़ा डिग्निटी रखो कुछ उस बंदे की, क्या तुम? वैसे हमारा बहुत ऊंचा गौरव है, हम श्री प्रभुपाद जी गौड़ी वैष्णव आचार्यों के चरण कमलों में आकर के प्रस्तुत हुए हैं, यहां पर आकर के इतनी नीच बातें करना, उसमें मन देना, ये बहुत गंदी बात है, मतलब बहुत हमारी गौरव से बहुत गिरी हुई बात है ये। जिस गौरव के, जिस ग्रंथों को हम प्रणाम करते हैं, उस गौरव के बहुत गिरी हुई बात है, उसके में हमने ही नहीं जाना है, वो हमारे लिए नहीं है। तो ये क्यों होता है, उसने ऐसा कर लिया, उसने वो गाड़ी ले ली, उसने वो सुविधा ले ली, उसने वो महाप्रसाद ले लिया, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भी भोग का भाव है। उसने ले लिया, मुझे क्यों नहीं मिला? अगर उसको मिल गया मुझे क्यों नहीं मिल सकता था? मुझे मिल जाना चाहिए था ना। भक्तों के समाज में कई बार हमारे मन में ये भाव आ जाता है कि अगर वो लोग अध्यक्ष बन जाएंगे तुम्हारे ऊपर राज करेंगे, अगर उस गुरु के शिष्य हमारे समुदाय में आ जाएंगे तो हमारे मंदिर पर राज करेंगे। ये विचार, या वो लोग अध्यक्ष बन जाएंगे, ये बहुत लघु चेतना है। ये अयम निज परावेत्ति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिताम तु वसुदैव कुटुंबकम। जो उदार चरित वाले हैं वो सबको अपना मानते हैं, हर वस्तु को भगवान कृष्ण का मानते हैं। ये मेरा, ये तेरा, मेरा नहीं है। अयम निज परावेत्ति, ये मेरा और ये उसका। गणनाम, ऐसी गणना लघु चेतना वाले करते हैं, छोटे सोच वाले करते हैं। शास्त्र कह रहा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। ध्रुव पर प्रहलाद महाराज कहते साधु स्कंद में, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरे ऊपर राज करेगा आकर के हमारे मंदिर पे हमारे। ये बहुत नीच चेतना है। अगर ये हम चेतना लेके चल रहे हैं, मतलब हमें भगवान के संरक्षण पे कोई विश्वास नहीं है। ऐसा परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज 1995 के एक लेक्चर में बोलते हैं, बहुत ठोक करके बोलते हैं महाराज, बहुत जोर से। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मेरा शोषण करेगा, मेरा अध्यक्ष बनकर के, मेरा लीडर बनकर के, तो आपको भगवान की रक्षा पे, संरक्षण पे कोई आपको विश्वास नहीं है, इसका मतलब आप कह रहे हो। तो बहुत छोटी चेतना, इसके लिए हम नहीं आए। हमने खुद अपनी चेतना को चेक करना है पहले, दूसरे ऊपर दोष उठाने से पहले। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अगर वो ले रहा है सुविधा? क्योंकि हमारे अंदर भी भोग की भावना है, मुझे भी मिल जाए, उसको मिल गया तो हम उसकी निंदा करूंगा, उसको नीचे खींचूंगा, उसका बदनामी करूंगा, उसके बारे में इधर उधर बातें फैलाऊंगा। ये सब प्रणवर्त असुर का हृदय है। ध्यान रखना है, जो ये ऐसा कर रहा है उसके जीवन से कृष्ण खो जाएंगे, जैसे यहां पर कुछ समय के लिए हो गया है, उसके जीवन से कृष्ण खो जाएंगे। चैतन्य भागवत में आई थिंक मध्यरी खंड के 13वें अध्याय जगाई मध्याय उद्धार, उसमें एक श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। वृंदावन दास ठाकुर साफ लिखते हैं, भक्तों के समाज में जो पार्टीबाजी करता है, ये उसकी पार्टी का, ये मेरी पार्टी का है, और एक पार्टी की साइड लेता है, उसका पतन हो जाएगा। समय नहीं मिला, मैं लेकर के आना चाहता था वो श्लोक, पढ़ लीजिए जगाई मध्याय उद्धार प्रसंग में, शायद 73 नंबर श्लोक है, पक्का नहीं मुझे पता, शायद 73 नंबर श्लोक है, 13वां अध्याय मध्य खंड का शायद। उसमें बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं वो, जो ऐसे एक पार्टी ज्वाइन करेगा उसका पतन हो जाएगा भक्ति में, क्योंकि ये लघु चेतना को गले लगा रहा है वो बेवकूफ। उठना है हमको, उससे उठना है। वो सिखा रहे हैं श्री प्रभुपाद जी, ब्रजवासी है हमारे यहाँ बैठे, हमारे साथ में बैठे हैं, हमारे सिर में बैठे हैं, हमारे पूजनीय श्री प्रभुपाद असली ब्रजवासी हैं। हमको लोगों को कृष्ण से जोड़ना है। जब पूतना के छाती से उठाकर के कृष्ण को लाए और यशोदा मैया से मिला दिया गोपियों ने, तो वो ब्रज भक्ति है, प्रचार असली ब्रज भक्ति है। खोई हुई जीवात्माओं को भगवान राधा राजबिहारी के चरणों से वापस जोड़ना, जैसे गोपियों ने जोड़ दिया कृष्ण और यशोदा को वापस, ये ब्रजभक्ति है। प्रभुपाद ब्रजवासी हैं जो विदेश में जाकर के लोगों को जोड़ रहे राधा राजभर के चरणों में, ये ब्रजभक्ति सिखा रहे हैं हमको, ये ब्रजभक्ति करनी है, ये असली ब्रजभक्ति है। हम किधर के किधर चले जाते हैं, हम अपने हृदय में दूषण है, अपने हृदय में कचरा प्रदूषण है। तो इस कचरे से कैसे बचना है हमने, तो सरल जीवन को स्वीकार करना है। मेरी क्या सेवा है, अगर मैं किचन का सेवा वाला भक्त हूं, मेरा किचन का सेवा है मान लीजिए, तो किचन का क्या क्या प्रसंग आया है वो देखिए। चैतन्य महाप्रभु को किसने किसने खिलाया है, कुकिंग करके, सची माता ने खिलाया है, और सीता ठाकुर ने खिलाया है, और दमयंती ने खिलाया है, और शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी ने खिलाया है, और चंद्रशेखर ने भी नहीं, तपन मिश्र ने जो भी है उन्होंने भी खिलाया है, सारंग भट्टाचार्य ने खिलाया है। ये सब प्रसंग पढ़ने हैं हमने, ये सब लीलाएं पढ़नी है कि मैं कृष्ण अपने किचन की सेवा कैसे अच्छे से कर सकता हूँ। प्रभुपाद जी ने किचन के बारे में कितना कुछ सिखाया है वो पढ़ना है मुझे, उसमें अपना मन रमाना है। और मंदिर में इतने सारे हमारे भक्त उपलब्ध हैं जो किचन में एक्सपर्ट हैं, जैसे हमारे वामनदेव प्रभु जी हैं, मंगलीलाल प्रभु जी हैं, और भी हैं कई भक्त मुझे याद आ रहे हैं जो किचन में पहले अध्यक्ष थे हमारे ब्रह्मचारी किचन में, उनके चरणों में जाकर प्रणाम करके उनसे पूछ रहे हैं। एक बार जयदत्त महाराज आए हुए थे यहाँ पर, तो एक बार वो दोपहर को कुछ व्यस्त हो गए और बोले शाम को, बता ही नहीं रहे थे कुछ क्या खाएंगे, थोड़ा सा कुछ खाते हैं बता देते हैं 2-3 बजे तक, बताए नहीं, फिर मीटिंग में बिजी हो गए, बताए नहीं, मैं सोच रहा था क्या, फिर बीच में हल्का सा पूछा, बोले तुम देख लो भूलो लो। फिर मैं वामनदेव प्रभु जाके प्रणाम किया, प्रभु जी आप बताइए अभी महाराज का ऐसे स्वास्थ्य है, ऐसा ऐसा लगभग कभी खाते हैं दूध, कभी फल, कभी राजगीरा वगैरह, क्या स्वास्थ्य ऐसा वगैरह। तो उन्होंने बताया कि ऐसा दूध बनाइए, इसमें हल्दी और ये सब डालकर ऐसे बनाइए। तो हल्दी कृपा प्रभु हमारे बैठे हैं यहीं पर ही, आपने बनाया था शायद, याद होगा आपको, है तो इन्होंने बनाया था, तो इनसे बनवा करके मैंने कहा 2 गिलास बना दो, क्या पता ज्यादा ले लें महाराज, 2 गिलास बना के ले गया। महाराज इतने खुश हुए, महाराज बोले बिल्कुल ऐसे ही, मेरे को यही चीज बिल्कुल चाहिए थी ऐसी कुछ, तो अपने आप से बना के लाए कुछ तो बहुत धन्यवाद। बाद में जाके मैंने उनको भी बोला, वामनदेव प्रभु जी को भी बोला, दोनों भक्त भी खुश हो गए, हम भी खुश हो गए। तो किचन की सेवा है तो किचन के भक्त, किचन की लीलाएं, किचन के ग्रंथ पढ़िए बस, और हरिगुण गाइए और आनंद में रहिए। इधर उधर का वाद विवाद, उसकी बात इसकी बात, उसने क्या कर दिया आश्रम में, उसके भक्त समाज में कांग्रीगेशन में, उसने इसको उसका ये हो गया, ये सब क्या, इसके लिए आएंगे, इसके लिए गौरवशाली जीवन है, बड़ा दुख का जीवन है ये, तो ऐसे नहीं करना है हमको। ऐसे हर एक सेवा में हम कर सकते हैं, हर एक सेवा में, हर एक सेवा में हम ऐसे कर सकते हैं, हर एक सेवा में। कुछ दिन पहले मैं हैगरी प्रभु जी का एक 1973 का आर्टिकल है, प्रभुपाद जी के साथ वृंदावन यात्रा, वो आर्टिकल को पढ़ रहा था कि कैसे प्रभुपाद जी बता रहे वृंदावन की, हम भी लेके जाते हैं ना यात्रा वृंदावन की अलग अलग भक्तों को, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ का यहाँ यहाँ ऐसे से बता रहे हैं। मैंने कहा अरे ये तो बेस्ट चीज मिल गई, प्रभुपाद जी ने कैसे वृंदावन यात्रा करवाई। तो मैंने उसको निकाल के संभाल के रख लिया, अभी अगले यात्रा जब भी करेंगे लॉकडाउन के बाद वृंदावन, प्रभुपाद जी के साथ साथ यात्रा करेंगे हम भी। तो आपको यात्रा करनी है, किसी को यात्रा में लेके जाना तो ठीक है, कितने लोगों ने यात्रा करी है, भागवतम चैतन्य चरितमृत, दर्जनों लोगों ने यात्रा करी है, उनसे शिक्षाएं लेनी है हमको। रघुवंश महाराज भी यात्रा में जा रहे थे, बीच में अपराध करके टाइम वेस्ट कर लिए कथा का, ऐसे कितनी शिक्षा निकाल सकते हैं हम। जो हमारी सेवा है उसकी शिक्षा हमें ग्रंथों से मिल जाएंगी, प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र से मिल जाएंगी, उसमें हमको दिल रमाना है, ना कि कंट्रोवर्सी में, निंदा में, फॉल्ट फाइंडिंग में, इधर की बात उधर में, ये तो मल के समान कचरा है, इसमें नहीं। तो नौ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, अगर हम नॉनसेंस बात करेंगे तो नॉनसेंस विचार आएगा और नॉनसेंस जीवन रहेगा और मृत्यु का संसार चलता रहेगा, इसलिए हमें सावधान होकर चलना है। उसके बाद अगर कभी सुन भी लिया किसी से, इमीजिएटली उसकी दवाई लेनी है। जैसे जब वो गौर गोविंद महाराज की कृष्ण कथा अमृत पुस्तक में लिखते हैं महाराज कि जब रूप गोस्वामी के से अपराध हो गया था अनजाने में, वो अष्टवक्र ब्राह्मण के प्रति हंस पड़े थे, तो अष्टवक्र ब्राह्मण के हृदय में थोड़ा सा, जब सनातन गोस्वामी के पास में गए वो अष्टवक्र ब्राह्मण के देखो रूप में हंसते हैं, तो गौर गोविंद महाराज बताते हैं ये प्रसंग, तो सनातन समझाते हैं कि रूप क्यों हंसे होंगे, क्यों, क्योंकि सनातन गोस्वामी ने लीला स्मरण किया और देखा अरे ये लीला की वजह से हंसे, वो भी हंस पड़े थे, तो अष्टवक्र ब्राह्मण बोले अरे आप भी हंस रहे हो, अभी पहले वो हंसे, फिर उन्हें बताया मैं क्यों हंस रहा हूं, फिर वो जाके रूप गोस्वामी को मिले। लेकिन फिर भी सनातन गोस्वामी ने देखा कि अष्टवक्र ब्राह्मण के हृदय में थोड़ा सा अभी भी एक नाराजगी थी, फिर दोनों रूप गोस्वामी और अष्टवक्र ब्राह्मण सनातन गोस्वामी चरणों में बैठ करके घंटों कृष्ण कथा श्रवण किए, तब उनके हृदय पूरा उनका हृदय से निकल गया, साफ हो गया। उसी प्रकार से निमाई पंडित ने एक बार अर्थवाद का आरोप सुन लिया किसी मायावादी से हमको शिक्षा देने के लिए, न चाहते हुए सुनते ही तत्काल निमाई पंडित ने गंगा में छलांग मार दी, तैर करके सब कपड़े सब वस्त्र छलांग मार के उस तरफ निकले, तो मुरारी सामने खड़े थे, बोले मुरारी को कृष्ण कथा कीजिए, नाम का विशेष उसमें भी नाम का गुणगान सुनाइए मुझे, इमीडिएटली मुझे इस कचरे से शुद्ध होना है, इस मल से शुद्ध होना है। जैसे सड़क पे जा रहे हैं, कुत्ते की टट्टी लग जाए अगर पैर में, क्या करेंगे, लेकर के उसको संभाल के लॉकर में रखेंगे क्या, सबको बांटेंगे जाकर के, मंदिर के पहले नल पे जाकर उसको धोएंगे। वही चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि इमीडिएटली निमरारी को बोला कि हरिनाम का गुणगान कीजिए, ये गंदगी को धुलना है। तो कभी किसी का सुन भी लिया हमने न चाहते हुए भी, गुजरते हुए भी, तत्काल धोना है उसको, उन भक्त की प्रशंसा सुननी है, उस वाद विवाद का सही भाषण वक्तव्य सुन लेना है। जैसे बहुत साल पहले अखबार में छाप दिया कि इस मंदिर में रेप हो गया असुरों ने, बिना पूरी बात पता किए। और मैं, कुछ भक्त मुझे ही पूछने लगे जहां मैं रहता था, अरे ऐसा हो गया कि मंदिर में, मैं प्रभु जी हम तो उस मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रसाद खाते हैं, हरिण कीर्तन करके आ जाते हैं, मुझे क्या पता हो गया हो, और मंदिर में थोड़े भक्त ही हैं केवल, कितने सारे बाहर के लोग भी आते हैं और कर्मचारी लोग भी हैं, अगर हो भी गया हो, किसी ने क्या कर दिया ऐसा, तो हमें उसको लेकर की सूचना क्यों है कि भक्ति में शक्ति नहीं है, इस्कॉन में शक्ति नहीं है वगैरह वगैरह। क्योंकि दिल में थोड़ा सा मसाला चाहिए कुछ, तो उसके लिए उसने ऐसा बोल दिया, अच्छा इधर आओ प्रभुजी बैठो जरा साइड पे करो, भागदम बाद में, ये इंपॉर्टेंट है, इधर आओ बैठो बैठो बैठो, ये प्रसाद खिलाओ प्रभुजी, प्रसाद खिलाओ, इधर आओ बैठो, क्या हुआ बताइए, अच्छा है ओ हा। और बाद में मेरे को एक सीनियर भक्त से पता लगा कुछ नहीं हुआ था, वो कोई विदेशी माता जी आई थी, वो रात को आई और जबरदस्ती, तो उसने अपना डुप्लीकेट कुछ पत्र दिखा दिया, मैं इस मंदिर से जुड़ी हुई आई हूँ, मुझे रूम दे दीजिए, उनको रूम दे दिया। और बाद में रात को 2 बजे ब्लैकमेल करने लगी कि अगर मेरे को 50,000 रुपये नहीं दोगे तो मैं सबको बता दूंगी मेरा रेप हुआ है। तो उन्होंने रिसेप्शन वालों ने कहा, हम क्या 5 रुपये नहीं हमारे पास, तुमको कहाँ से देंगे 50,000, जा तूने जो जो करना जा। उसने जाके सबको खबर कर दी मेरे साथ रेप हुआ है और असुर लोग आ गए, अखबार वालों ने सब छाप दिया गलत इस्कॉन में, कितने बदनामी हो गए असुरों की। बाद में मंदिर के व्यवस्थापन के भक्तों ने देखा, इतना मुश्किल समय देखो व्यवस्थापन के लिए, पूरे मुंबई में खबर फैल गई, और फिर सारे पत्रकारों को बुलाया, असुरों को, सॉरी सच बोल दिया गलती से, ऐसे नहीं बोलना चाहिए माइक में बट गलती से, तो उनका भी कर्तव्य है, वो पेट पालना है उनको भी, जो सिखाया जाता है वो क्या करें। इतने लोगों को बुलाया, कोई नहीं आया, ये सब सफाई देने के लिए बुलाया, 26 लोगों ने बोला था हम आएंगे, कोई नहीं आया। पर मेरे जैसा भक्त जिसको बीच में मसाला लेना है, जैसी कुछ बात उठी, थोड़ा सा बुलबुला आया, इमीजिएटली घंटों घंटों में लगा दूंगा उस कचरे को अपने हृदय में लेने में। और बाद में संशय पक्का ऐसा हो जाएगा कि अगर पता लग भी गया कि उस भक्ति ने गलती नहीं करी, नहीं कुछ तो किया होगा। अभी जब परसेन जी ने सबको बोल दिया कि मेरे भाई को मार के कृष्ण ने समंतक मणि ले ली, बलराम जी बोले बचपन की चोरी की आदत इसकी गई नहीं, तो भगवान बोले अरे हद हो गई है, तो बताओ भगवान फिर जाकर के लेकर गए जंगल में ढूंढ के लाए, मणि वापस किया और अपना नाम ठीक किया, बताओ ये क्या चल रहा है। नहीं खैर भगवान वैसा किए, हमको कोई निंदा भी कर रहा है तो उसको समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है उसको साफ करने के लिए। अगर अधिकारी जन गुरुजन पूछे तो नम्रता से हम प्रस्ताव अपना सफाई दे सकते हैं, नहीं तो बस सरल भाव से अपना भजन करते रहना, कोई निंदा करेगा ठीक है, श्रीवास पंडित का हम शिक्षा ले सकते हैं गोपाल चप्पल के व्यवहार से, है ना, बस ठीक है। उसको प्रतिकार करने में समय बर्बाद करने का जरूरत नहीं है ज्यादा, मिनिमम बिल्कुल मिनिमम समय, मिनिमम शब्दों में कुछ सफाई देकर अधिकारी जन गुरुजन को, बस हमें हरे नाम में लगाए रहना है बस। तो जब ये सब बात उठती है तो एक लास्ट विचार आता है, एक दो बात और बोल देता हूं कि भगवान सबको जानते हैं। अंत्य लीला के 16वें अध्याय के 48-49वें श्लोक में आप देख सकते हैं, कालिदास को चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरणों का पादोदक ग्रहण करने के लिए आज्ञा क्यों दिया। एकमात्र भक्त हैं गौर लीला में जिनको अपने चरणों का धोवन पीने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दिया, किसी को अलाउड नहीं था, किसी को अलाउड नहीं था, महाप्रभु के 3.5 अंगों को भी अलाउड नहीं था, लेकिन कालिदास ने दोनों हाथ सटा करके पूरा 2 बार भगवान का चरणामृत पी लिया भगवान के सामने, गौरंग महाप्रभु के सामने, महाप्रभु ने मना नहीं किया। क्यों? क्योंकि कभी भक्तों की निंदा नहीं सुनते थे उनको, भक्त हो तो छोड़ ही दो, उनको महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण गोस्वामी लिखते हैं महाप्रभु कहते हैं, क्योंकि कालिदास को भक्तों की महानता पे पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण श्रद्धा है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं इसलिए ऐसी अद्वैय कृपा दी गौरंग महाप्रभु ने, अपने चरणों का पादोदक पीने की परमिशन दिया, किसको, कालिदास को, क्योंकि भक्तों की महानता में पूर्ण श्रद्धा है। अगर ऐसी विशेष कृपा हमारे जीवन शुद्ध करने के लिए महाप्रभु से हमको भी चाहिए तो भक्तों में पूर्ण श्रद्धा विकसित करनी है, ना कि वाद विवाद निंदा सुनकर कचरा करना है अपने दिल को, तब महाप्रभु विशेष कृपा मिलेगी, जो हमारे जैसे कलयुग का होपलेस कैंडिडेट को चाहिए भगवत धाम जाने के लिए। और यही महाप्रभु सिखा रहे हैं किसको, ग्राम्य कथा न कही व्यवहार कहने, ग्राम्य वार्ता न सुनी बे, कचरी बात न सुनना है न कहना है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी आदि लीला के 10वें अध्याय के 158 तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में कि वो भी किचन के एक्सपर्ट थे, जो भक्ति लोग किचन की सेवा में, और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की फोटो लगा सकते हैं किचन में, प्रणाम कर सकते हैं उनको, महाप्रभु को उनका कुकिंग बड़ा पसंद था, किसका, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी किसी भक्ति की भी निंदा सुनते नहीं थे कभी भी, किसी भी प्रकार की कोई कॉन्ट्रोवर्सी, कोई निंदा, कोई दोष दर्शन, कुछ नहीं, कहते थे भक्ति कर रहा है ठीक हो जाएगा सब, छोड़ो इसको, हरि नाम जप करो बस। अब ये क्लास विचार मन में आ सकता है हमारे किसी के कि भैया, और लोग बोलते भी हैं कि, और इससे होता क्या है, ये सब कचरा सुन करके हमारे हृदय में ही एक होपलेसनेस क्रिएट हो जाती है, निराशापन, आशाहीनता क्रिएट हो जाती है हमारे हृदय में, एक सृजन हो जाती है कि इस संस्था में मेरा कुछ नहीं होने वाला, इस मंदिर में मेरा कुछ नहीं होने वाला, यहाँ बहुत खराब लोग हैं, इस प्रकार के भाव सृजन होने लगते हैं और धीरे 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 ठोस हो जाते हैं और हम चले ही जाते हैं भक्तों के समाज से दुर्भाग्यवश। सुशील भक्तिचारु महाराज जिनका परसों व्यास पूजा है, उनके चरणों में हम एक उपहार देना चाहिए, परसों के दिन पहला व्यास पूजा महाराज की तिरुभाव के बाद, महाराज समझाते रहे कि इस कौन में भक्तों के संग में रहिए, कुछ खराबी नहीं है, सब कुछ सही है, पूरा जीवन महाराज बोलते इस कौन को छोड़कर मत जाना। तो एक भक्त बड़ा अच्छा कारण दे रहे थे, अगर आप बाहर जाकर सोच भी रहे हो कि मैं भजन कर लूंगा, तो आप ये सोचिए अंत समय में कौन भक्त आपके लिए प्रार्थना करेगा, लेकिन भक्तों के संग में रहोगे तो हजारों भक्त आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हजारों भक्त आपके लिए प्रार्थना करेंगे, अगर आपने जीवन और भक्ति की है उस प्रकार से। और हमारे सामने हजारों उदाहरण उपलब्ध हैं इस कौन के इतिहास में, जो भक्तों के संग में रहकर आखिर तक रहे और उनके लिए कितने भक्तों ने प्रार्थना किया, भजन किया वगैरह वगैरह। नहीं तो भक्तों के समाज में हमें रहना है, इन सब कचरों को सुनकर के आशाहीनता बेवकूफी वश अपने जीवन में हृदय में नहीं बना लेनी है, और अंत तक भक्तों के समाज में रहना, इस कौन समाज में श्री प्रभुपाद जी चरणों में ही रहना है। और ये उपहार हम श्री भक्तिचारु महाराज के चरण कमलों को अर्पण कर सकते हैं परसों के दिन, कह सकते हैं महाराज आपके आशीर्वाद दीजिए कि हम जीवन भर आपके आगे को पालन करेंगे हम, और इस प्रकार से हम आपका शिष्यत्व स्वीकार करेंगे, आपकी कृपा प्राप्त करके हम जाएंगे भगवत धाम। तो कोई भक्त अब सोच सकता है कि यार आपको मालूम नहीं है, इधर आओ, तुम ऐसे भोलू राम बन के रहोगे ना तो तुम्हारा शोषण कर लेंगे, ऐसे सरल बन के नहीं रहना, थोड़ा इधर उधर का मालूम होना चाहिए, मालूम इधर तुम्हें हम सिखाते हैं इधर, है ना, ये सरल बन के ना, ये बुद्धू बन के रहना नहीं है, थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए इधर उधर सब क्या है ना थोड़ा। तो प्रभुपाद जी से गिरिराज महाराज ने व्यवहार किया इसी जुहू बीच पे, इसी मंदिर के बारे में कुछ चर्चा में यही बात को। तो जब प्रभुपाद जी चले गए पहला एग्रीमेंट होकर के, अभी नहीं मैं बोलूंगा तब, प्रभुपाद जी चले गए जब, और गिरिराज महाराज यदुवर प्रभु को छोड़कर के चले गए जिम्मेदारी की, भैया आप मिस्टर नायर से व्यवहार कीजिए और ये जमीन को प्राप्त कीजिए। तो एक समय पे आकर के नायर साहब ने बुद्धू बना करके कुछ तो कर दिया, तो तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी वापस आए यहाँ पर आखिरकार, और तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद जी गिरिराज को बुद्धू बना करके नायर साहब ने ऐसे गलत काम कर दिया। तो प्रभुपाद जी ने कहा क्या करें, गिरिराज बड़ा सरल है। तो गिरिराज महाराज सामने ही थे तो उनको बड़ा लगा, श्रील गिरिराज महाराज के चरण कमलों में प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है, श्रील गिरिराज महाराज को लगा कि ये सरलता बड़ा एक अयोग्यता है भक्ति के समाज में, भक्तों के समाज में, भक्ति में मैं सिंपल हूँ, ये एक डिस्क्वालिफिकेशन है प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो जुहू बीच पे तृणव्रत का ही अध्याय पढ़ रहे थे वो प्रभुपाद जी के लिए कृष्ण पुस्तक से, इसी जुहू बीच पे एक दिन सुबह, तो वहां पर वो एक पंक्ति पढ़ने लगे, क्या पढ़ने लगे कि कैसे वसुदेव जी ने बता दिया था किसको, नंद बाबा को, कि ऐसा ऐसा कुछ होगा। अभी खोलिए आर्टिकल जल्दी से हम देखेंगे। तो हाँ, तो आर्टिकल के बीच में आप आ जाइए जहां पर कृष्णा डिफीट्स लिखा है ना, कृष्णा डिफीट्स अ डीमन, थोड़ा ऊपर 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 थोड़ा ऊपर, कृष्णा डिफीट्स अ डीमन।
हाँ बस 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 बीच में ही है, यहीं पर ही है, बीच में देख रहे हैं आप, आएगा यहीं पर ही। कहाँ गया? हाँ मिल गया ना, मिल गया ना।
तो कृष्णा डिफीट्स अ डीमन। हाँ तो सम मंथ्स लेटर जब कृष्ण, मैं हिंदी में व्यवहार करूंगा, आप इंग्लिश में जिसको पढ़ना पढ़ लीजिए, मैं हिंदी में बोलता जाऊंगा। जब कृष्ण पुस्तक पढ़ रहे थे तो प्रभुपाद अपने सुबह के समय में एक बार कृष्ण पुस्तक में तृणाव्रत का अध्याय आया जिसमें भगवान कृष्ण एक असुर को हराते हैं जो कि एक बवंडर के रूप में आया था। वहां मैंने पढ़ा, गिरिराज महाराज कह रहे हैं, वहां मैंने पढ़ा कि ऐसे अद्भुत कृत्य देख करके नंद महाराज सोचने लगे वसुदेव के बारे में बार बार, कि कैसे नंद महाराज को पहले ही बता दिया था वसुदेव ने कि भैया ये कुछ खतरा हो सकता है, गोकुल में वापस चले जाइए आप जल्दी से। तो नंद बाबा सोचने लगे कि वसुदेव जी कितने बड़े योगी हैं, कितने बड़े है ना योगी हैं, जो सब जानते हैं असलियत बात। तो प्रभुपाद जी ने कहा वसुदेव एक क्षत्रिय हैं, वो अपनी राजनीति की दृष्टिकोण से समझ सकते हैं, वो अंदाज अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन नंद महाराज एक सरल वैश्य एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं किसान है नंद बाबा, एक सरल किसान है, लेकिन वसुदेव जी वो राजनीति जानने के कारण अनुमान लगा सकते हैं। जैसे सनातन गोस्वामी ने भी अनुमान लगा लिया था कि ये इतना मेरी खातिरदारी कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो राजनीति जो जानता है वो अनुमान लगा पाएगा, तो प्रभुपाद जी वो कह रहे हैं, लेकिन नंद बाबा जो है एक सरल हृदय के किसान है। गिरिराज महाराज ने देखा कि प्रभुपाद जी सरल शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं एक शुद्ध भक्त के लिए, और मैं सोच रहा था कि सरल भक्त होना ये एक अयोग्यता है। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी ये सरलता एक दुर्गुण नहीं है क्या, अयोग्यता नहीं है क्या, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है क्या? प्रभुपाद जी ने कहा नहीं नहीं, नंद बाबा के लिए ठीक है, वो तो वैश्य हैं, लेकिन वसुदेव जी राजनीतिज्ञ हैं, उनके लिए जरूरी है ये, तो हमने अनुकरण नहीं करना है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जिस प्रकार से एक डॉक्टर एक चिकित्सक है ना सर्जरी करता है, पेट काटता है, लेकिन मैं चाकू लेकर के किसी का पेट नहीं काट सकता हूं, मुझे अनुकरण नहीं करना है, वो कर सकता है। फिर प्रभुपाद जी ने बताया लेकिन राजनीतिज्ञ वसुदेव भी कृष्ण के बारे में स्मरण कर रहे हैं और नंद बाबा भी कृष्ण के बारे में स्मरण कर रहे हैं। नंद बाबा एक सरल किसान के रूप में कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं और वसुदेव जी एक दूसरे प्रकार से कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं आगे कि कृष्ण के बारे में स्मरण करना महत्वपूर्ण है, चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, कृष्ण के बारे में स्मरण करके चल रहा है उसको सबको एक जैसा सा लाभ मिलेगा। हर किसी को समझना चाहिए कि मैं कुछ भी हूं, ज्ञाने प्रयास मधुपा सनमंत एव स्थाने सिद्ध शुद्धि गताम, आप जो हो जिस स्थान में हो जिस चेतना में हो, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं आगे, आपको पूरा लाभ मिलेगा। इतना स्मरण करो कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं और मुझे इस चेतना के द्वारा कृष्ण की सेवा में लगे रहना है, जैसा मेरा वृत्ति है उसके अनुसार मुझे कृष्ण की सेवा में लगा रहना है। आखिरी पैराग्राफ में प्रभुपाद जी का सारांश करते हैं, गिरिराज महाराज लिखते हैं, प्रभुपाद का उत्तर बहुत गहरा था। प्रभुपाद ने कहा कि कोई व्यक्ति हो सकता है कि बिल्कुल सरल है हृदय से और वो उसकी अच्छी योग्यता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए इस प्रकार की सरलता एक अयोग्यता हो सकती है। जिस प्रकार से एक वैश्य या ब्राह्मण के लिए सरल होना अच्छा है, लेकिन क्षत्रिय के लिए जिसको राजनीति करना है, डिप्लोमेसी करना है, उसके लिए सरलता होना अयोग्यता है। साथ ही साथ अल्टीमेटली अंत में क्या महत्वपूर्ण है, सब लोग अपने अपने वृत्ति और कार्य के अनुसार, गुण कर्म के अनुसार कृष्ण को स्मरण कर पाएं, कृष्ण को सेवा कर पाएं और कृष्ण भावना अमृत में अपना जीवन बिताएं। तो सरल होना गलत नहीं है, सरल होना असली योग्यता है, और सरलता से भक्ति करना, भजन करना, गुरु कृष्ण की आज्ञा के अनुसार, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को यापन करना और हरिनाम का उच्चार करके भगवत धाम जाने की तैयारी करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन किसी की वृत्ति है या गुरु और अधिकारियों के द्वारा आदेश है कि आप इस प्रकार की सेवाएं कीजिए, तो उसको शरणागति करना भी हमारा कर्तव्य है। अपनी वृत्ति को लेकर के बैठे नहीं रहना चाहिए, नहीं मैं तो ये सेवा नहीं करूंगा, मेरा वृत्ति अलग है, नहीं। अगर जरूरत है तो उस वृत्ति के अनुसार, जैसे गिरिराज महाराज सरल हृदय के भक्त थे, प्रभुपाद जी ने कहा इस मंदिर को आप बनाइए चलाइए, और गिरिराज महाराज इतने सरल है, अगर आपको लगता है कि मैं सरल रह करके ज्यादा सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो गिरिराज महाराज जी ने तो सरल रहकर कितना सेवा कर दिया, उनका एक 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 हजारवां गुणा भी, अगर एक चौथाई एक क्या एक हजारवां भी मैंने थोड़ा सा कर दिया, एक बूंद मात्र भी, तो प्रभुपाद जी हमें स्वीकार कर लेंगे। तो सरलता को खराब करने की जरूरत नहीं है, भगवान के चरणों में जाना है। तृणाव्रत के इस लीला से हमने सीखना है कि आंखों में धूल अपने भी नहीं दूसरों के भी नहीं झोंकना है। हरिनाम और वैष्णव भजनों का प्रभुपाद जी ग्रंथों का रसा स्वाद करते हुए भगवत धाम जाने की तैयारी करनी है। धन्यवाद। तो समय से 3-4 मिनट ऊपर हो गया, अभी प्रश्न तो नहीं कर पाएंगे। किसी का अगर कुछ टिप्पणी है, महाराज जी के चरण को प्रार्थना करते हैं। महाराज कुछ टिप्पणी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कृपा करके प्रस्तुत कीजिए। अच्छा तो हम यही विराम देंगे, प्रश्न नहीं करेंगे, क्षमा कीजिएगा। श्रील प्रभुपाद की निताय, गौरंग महाप्रभु की निताय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की। धन्यवाद। हरे कृष्ण।